उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को पहले चरण के तहत 58 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। लगभग 60% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोरोना संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज करते हुए वोटरों ने खूब उत्साह दिखाया। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राज्य में दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मणिपुर के चुनाव कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब पहले चरण के तहत 27 की बजाय 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण का मतदान अब 3 की बजाय 5 मार्च को होगा। और अब बात उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की, जहाँ 14 फरवरी को मतदान होना है। यहाँ सभी 68 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा के सबसे लोकप्रिय चेहरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड में अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी को निशाने पर रखते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा,
कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, सत्ता आती है तो इनका भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाता है और सत्ता जाती है तो पूरी ताकत षड्यंत्रों में लगा देते हैं, बौखला जाते हैं। 5 साल से ये सत्ता से बाहर है, इसलिए कांग्रेस के लोग उत्तराखंड के लोगों से भड़के हुए हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए अब ये देवभूमि की संस्कृति और पहचान को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला फॉर्मूला आजमा रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। भाजपा द्वारा कुछ महीनों के भीतर ही 2 मुख्यमंत्रियों को बदले जाने को कांग्रेस अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा,
बीजेपी ने पिछले 5 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले, क्यों? ये मतलब 3 चीफ मिनिस्टर क्यों बदले इन्होंने? क्योंकि इनके चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट थे, इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, इसीलिए इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर को बदला। अच्छा ठीक है, देखिए बीजेपी में चोरों की लाइन लगी हुई है। एक को बदला, उसको चोरी करने दी, जब उसने चोरी कर दी उन्होंने कहा अच्छा भाई परे हो, दूसरे को बुलाया, दूसरे से कहे अब तू चोरी कर, और फिर जब उसने चोरी की उसको हटाया, कहा तू हट जा अब तू चोरी कर। कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार लाएगी, किसी एक राजा की सरकार नहीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें गरीब जनता की, किसानों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की और युवाओं की रोजगार दिलवाने वाली सरकार चाहिए।
और अब चलते हैं कर्नाटक, जहां हिजाब विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ओडीपी में हिजाब पहनकर स्कूल आने वाली लड़कियों को रोके जाने के बाद यह विवाद पूरे राज्य में फैल गया। हालांकि पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। अदालत ने धार्मिक लिबास पर अंतरिम रोक लगाते हुए शांति बनाए रखने के लिए निर्देश दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने सोमवार से स्कूल खोले जाने की बात कही है।
3 मेंबर जज हेडेड बाय आवर ऑनरेबल सीजे ऑफ हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट हैज हर्ड द मैटर एंड दे हैव पास्ड अ ऑर्डर दैट दे गोइंग टू हियर द केस डे बाय डे एंड डे टू डे बेसिस एंड दे हैव अपील्ड ऑल द स्टेक होल्डर्स नॉट टू प्रिसिपिटेट द मैटर एंड दे हैव सेड दैट ऑल द स्कूल्स कैन ओपन, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. Since there is last 2 days there is no incident, we want incident free in future also. So I want the cooperation of the media in this case, and we'll all work together. And we have taken a decision in a meeting now that up to 10th standard the schools will be open on Monday, and looking into the situation as a second stage we will decide about 11th, 12th standard and other degree colleges.
हिजाब विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा,
कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए हिजाब विवाद के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया।
देश में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हमें लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार लोगों के खाने और पहरावे पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है, लोगों के मौलिक अधिकारों का ये हनन है। जिस तरह से संघ परिवार के लोग हिजाब को लेकर देश में विवाद खड़ा कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं क्या मुस्लिम लड़कियां कॉलेज स्कूल जा रही हैं, ये उनकी परेशानी है।
और चलते चलते चर्चा कोरोना की। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, हालात काबू में आ गए हैं। ताजा स्थिति के बारे में बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल कहते हैं,
हमने एक स्थाई पर केसेस में और एक्टिव केसेस में कमी होते हुए नोट किया है, दूसरे स्थाई पर ओवरऑल इन्फेक्शन स्प्रेड में भी हम देख रहे हैं कि एक डिक्रीजिंग ट्रेजेक्टरी दिखाई देती है।
केरल और मिजोरम जैसे राज्यों में स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। नीति आयोग के डॉक्टर वी के पॉल इस बारे में कहते हैं,
अगर हम अभी भी देखें तो कुछ प्रदेशों में पॉजिटिविटी रेट हाई है। स्टेट के लेवल पे वीकली डेली पॉजिटिविटी केरल में हम रिपोर्ट कर रहे हैं 29.57, कम हुआ लेकिन एनॉर्मसली हाई, वेरी हाई। मिजोरम छोटी ज्योग्राफी है, छोटी स्टेट है, 26.5%। हिमाचल नॉट सो स्मॉल, 12%, 11.79%। फिर 12% अरुणाचल में भी है और 17% सिक्किम में भी है।
हालात को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वह कोरोना नियमों का पालन करते रहें। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।